कृष्णा। तो अभी हमारे पास 6 दिन है और 150 श्लोक हमें पूरे करने हैं। तो 15वें अध्याय में 20, 16वें अध्याय में 24, 17वें अध्याय में 28, 72 श्लोक होते हैं और फिर आखिरी अध्याय में 78 श्लोक है। तो 6 दिन में अगर हमें 150 श्लोक करने, मतलब एक क्लास में 25 श्लोक करने, मतलब हम लगभग एक श्लोक पे 2 मिनट डाल सकते हैं। तो एक अगर 1 घंटे का क्लास होगा, 1.5 घंटे का क्लास होगा, तो हम उस पर 3 मिनट डाल सकते हैं। तो हम देखेंगे, हम जितना विस्तार से आवश्यक है उतना लेंगे। ऐसे नहीं है कि जरूरी हमें पूरा करना ही है, पर अगर आपको कोई सवाल है और सवाल डायरेक्टली इससे कोई संबंधित नहीं है, तो हम क्लास के बाद वो सवाल देख सकते हैं। अगर डायरेक्टली इसको कोई संबंधित है तो हम वो सवाल जरूर ले सकते हैं। तो 15वां अध्याय तो कम से कम आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। 20 श्लोक है इसमें, इतना मुश्किल नहीं है ये। और अभी मैंने बताया था कैसे 13वें अध्याय के 22वां श्लोक जो था वो बीज वाक्य है, कि उसमें बताया गया है कि भव बंधन में फंसने का कारण क्या है। पुरुष प्रकृति स्तोई भूमते प्रकृति जान गुणावान, भोग करने की इच्छा। तो जैसे बीज से अभी वृक्ष आता है, तो उसी तरह से उस भोग करने की वृत्ति से भोग आया है। वो भोग क्या है उसका वर्णन ये 15वें अध्याय में होगा। तो 15वें अध्याय के जो 4 विभाग है, पहला विभाग जो है उसमें पहले से 5वें श्लोक तक, तो उसमें क्या बताया है कि किस तरह से आत्मा, ये भौतिक जगत किस तरह से एक उल्टा वृक्ष है। और अपसाइड डाउन, उल्टा एक शब्द नहीं है, उल्टा ही ठीक है, हाँ, एक उल्टा वृक्ष है, वह वर्णन है पहले 5 श्लोकों में। तो अभी यह तो एक प्रतीकात्मक हो गया, क्योंकि भौतिक जगत तो कोई वृक्ष नहीं है। तो फिर उसके बाद में पहले 5 श्लोकों में बताने के बाद ये बताया गया है कि 6 श्लोक से 11वें श्लोक तक ये बताया कि आत्मा इस भौतिक जगत में कैसे बनता है और कैसा मुक्त हो सकता है, प्रधानतः कैसे बनता है और कैसे मुक्त हो सकता, कैसे बंधन में फंसता है, वह बताया गया है। तो मतलब जो एक प्रतीकात्मक रूप में पहले 5 श्लोकों में बताया गया है, वह तत्वज्ञान के स्तर पर फिर 6 से 11वें श्लोक में बताया गया है। फिर 11वें श्लोक में बताते हैं कि आत्मा को मुक्त होना है तो ज्ञान चक्षु प्राप्त करना चाहिए। 10वें और 11वें श्लोक में इस्तेमाल आता है। तो ज्ञान चक्षु कैसे प्राप्त करें उसका मतलब, हम कैसे भगवान को समझें, उसका प्राथमिक रूप पे उसका वर्णन 12 से 15वें श्लोक में है। तो पहले क्या है, कैसे भवबंधन में फंसा है आत्मा, वह प्रतीकात्मक रूप से बताया है उल्टे से वृक्ष की दृष्टि से। फिर दूसरे 6 से 11वें श्लोक में कैसे तत्वज्ञान के स्तर पे समझाया कैसे भवबंधन में फंसा है, और फिर उस बंधन से निकलने के लिए ज्ञान चक्षु कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका वर्णन 12वें से 15वें श्लोक में है। और फिर 16वें से 20वें श्लोक में कैसे भगवान ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, वो जो ज्ञान चक्षु से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में क्या प्राप्त हो सकता है, कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है और उनकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हम बताया था पहले कैसे भगवद्गीता में 2 प्रधान प्रश्नों का उत्तर है कि क्या साध्य क्या है और साधन क्या है, तो वह इसी अध्याय में स्पष्ट होगा। तो लगभग सभी आचार्यगण जो है वह इस अध्याय को एक समान नाम देते हैं, पुरुषोत्तम योग। अभी कैसे है, ये जब भगवान ने बताया, भगवद्गीता बोल रही थी, वो बोली जा रही थी, तो तभी ऐसे नहीं था कि भगवान का अवतार द्वितीय अध्याय, नहीं, वो तो एक सीधा वार्तालाप चल रहा था, उसके संवाद चल रहा था। फिर उसको बाद में व्यासदेव जी ने जब लिखा तो उसको विभाजित किया, और जब विभाजित किया तभी अभी विभाजन क्या है, विभाजन हो जाने के बाद उसको कैसे नाम देना है, ये अलग अलग आचार्य अलग अलग नाम देते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे ही संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य देखेंगे तो उसमें उसका नाम कुछ अलग होता है, भक्त फिर विद्याभिषेक अध्याय का नाम अलग होता है, अध्याय में जो श्लोक है वो समान है पर जो शीर्षक है अलग हो सकता है। और वह क्यों होता है, क्योंकि हर एक आचार्य अपने एक पद्धति से विश्लेषण कर रहा है, और हर एक आचार्य विश्लेषण कर रहे होते अपनी पद्धति से, तो उस समय किसी विषयों पर वो जोर देते हैं। पर यह एक अध्याय अलग, किसी ने और कोई जान नहीं दिया, सातवें लघु एक नाम दिया है पुरुषोत्तम योग। तो ये पुरुषोत्तम का वर्णन है, उसी की ओर सारा अध्याय जा रहा है, और वो आखिरी छह श्लोकों में आता है, 15 से 20 श्लोक में पुरुषोत्तम के बारे में वर्णन आएगा। पुरुषोत्तम मतलब जो परम पुरुष है। तो चार विभाग है उस अध्याय में। तो शुरुआत करते हैं, श्री भगवान वाच शाखम अश्वत्थम प्रहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेद। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम्, संस्कृत है, जो मूल होते हैं वो ऊपर चले गए, अधःशाखम् शाखा जो है नीचे चली गई है। अश्वत्थम प्राहुर, तो ऐसा जो अश्वत्थ है, ये वृक्ष है। अभी अश्वत्थ कैसे होता है आपको अगर थोड़ा व्हाट इज बॉटनी, बॉटनी मतलब जो वनस्पति शास्त्र जो है उसमें क्या होता है अच्छा छोड़ते वनस्पति शास्त्र तो यस आप कुछ बोले थे नहीं बोलिए क्या बोल
आयुर्वेदिक
क्या है, आयुर्वेदिक में विशेष करके क्या है स्वास्थ्य के बारे में जरूर होता है। बॉटनी ये और बड़ा शास्त्र है, उसमें से एक विभाग है स्वास्थ्य के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो वृक्ष होते हैं उसके विभाग होते हैं, जैसे मानव में होता है कि वही व्यक्ति भारतीय हो सकता है, फिर महाराष्ट्रीय हो सकता है, फिर वह किसी गांव का हो सकता है, किसी कुल का हो सकता है। वैसे प्राणी, वैसे जानवरों में भी, जानवरों में या पक्षियों में भी ऐसे होता है कि ये इस और जैसे फाइलस या स्पीशी का है, इस योनि का है, फिर उसमें इस परिवार का है, इस परिवार का है। तो अश्वत्थ का संस्कृत में जो अर्थ होता है उसका जनरल अर्थ है कि फिग ट्री, पर उसका विशेष रूप से प्रभुपाद जी भाषांतर करते क्या है, ये वटवृक्ष है। तो अभी अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम्, तो इसको बताया गया है कि ये अव्यय है। अभी हम जानते हैं कि भौतिक अस्तित्व, भौतिक जगत अव्यय नहीं है और शाश्वत नहीं, उसका अव्यय होता है, पर भौतिक शक्ति जो है, जो भगवान की पराशक्ति है, वह अव्यय है। तो ये कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, और आत्मा की दृष्टि जो है से वो तो अव्यय है। तो कितने समय से बंधन में है हम किसी को पता नहीं है। छंदांसि यस्य प्राणानि, अभी इसके जो पत्ते है वह क्या है, छंद है। छंद मतलब ऋग्वेद जो वेदों के मंत्र है जिससे कर्मकांड का फल मिलता है, वह इसके पन्ने हैं। तो अभी पत्ते है, पन्ने है, क्यों बताया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो वेदों का ज्ञान है केवल सिर्फ वेदों के श्लोकों का या मंत्रों का ज्ञान होगा, उससे ये वृक्ष से बाहर नहीं निकल सकते, उससे इस वृक्ष से ही आप में ही कुछ प्राप्त होगा आपको, क्योंकि उसके पन्ने जो है वह क्या है, वह इस वृक्ष के ही भाग है और वह वेदों के मंत्र है। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेद, तो मतलब जो उन पन्नों को जानता है वो वेदवित नहीं है, जो संपूर्ण वृक्ष को जानता है वो वेदवित है। तो ये हम भाग देखते हैं कि जो भागवतम के 23वें अध्याय में जो यज्ञ ब्राह्मण पत्नियां होती हैं, तो वह वेदों को ज्यादा जानती नहीं है, उनके पति और जानते हैं जिस तरह से, पर क्या है उनके पति कृष्ण को नहीं पहचान पाते हैं। तो सिर्फ वेदों के मंत्रों को जानने से व्यक्ति वेदवित नहीं बनता है, वेदवित। अभी यहां पे बताया गया है कि सारे वृक्ष को जो जानता है वो वेदवित है, और बाद में हम भगवान बताएंगे कि सारे वेदों को जानने का उद्देश्य क्या है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, मतलब ये वृक्ष को जानने के बाद क्या करना है, ये वृक्ष के परे जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनको जानना है। तो अभी ये वृक्ष का मतलब क्या है, अभी साधारणतः तो हम वृक्ष में जो मूल है ऊंचे देखते हैं, तो वृक्ष के मूल हम ऊपर कहाँ देखते हैं, कोई प्रतिबिंब होता है उसमें, तो यह एक, इसका मतलब है कि भौतिक जगत एक प्रतिबिंब के समान है। तो अभी क्या है, आचार्यगण अलग अलग उदाहरण देते हैं, और आप सब जानते हैं शाखा चंद्र न्याय, जानते शाखा चंद्र न्याय। तो शाखा चंद्र न्याय मतलब क्या है कि को बालक जो है वह देख नहीं पाता है चंद्र को, वो सिर्फ नीचे देख रहा है, तो माता उसको बोलती है देखो ये शाखा दिख रही है, ये पेड़ दिख रहा है आपको, उसको चांद चांद देखना है पर देख नहीं पा रहा है, तो फिर हाँ ये दिख रहा है आपको, हाँ अभी वो शाखा दिखती है आपको, हाँ वो शाखा दिखती है आपको, हाँ तो उसके बीच में आपको चमकता हुआ चीज दिखता है क्या, हाँ वो चांद है, हाँ तो मैं उस शाखा पे चढ़ूंगा और चांद को पकड़ लूंगा। नहीं, वैसे नहीं होगा, वास्तव में वो चांद और वो शाखाओं में कोई संबंध नहीं है अंतरंग रूप से, पर वो बालक की दृष्टि को उधर मार्गदर्शित करने के लिए उसको मदद की ली जा रही है। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत के कोई भी उपमा जो है वह हमारे भावबंधन का क्या असली स्वरूप है वह समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अभी जब पुरुष प्रकृति स्थोही जब उदाहरण देते तभी बताया था कैसे कि कोई व्यक्ति मूवी देख रहा है, तो वह एक उदाहरण दिया था, और आपके तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ जो मिथ्या निर्मित किया जा रहा है वो बताया जाता है। शास्त्र में बताया, शास्त्र उदाहरण देते कैसे हमारा भौतिक जगत के सपने के समान है, या फिर शास्त्र बताते हैं कभी कभी कि इस भौतिक जगत में जो सुख है वह मृग तृष्णी के समान है, जो रेगिस्तान में पानी दिखता है उसके समान है, या यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक प्रतिबिंब के समान है। तो इस तरह से, या कुंती महाराज नाटो नाट्य धरोहे था, जो नाटक चल रहा है, तो इस तरह से नाटक, सपना, मृग तृष्णी, प्रतिबिंब, ऐसे अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, और इन सबके द्वारा एक समान बताया जा रहा है कि जैसे दिखता है वैसे असली नहीं है। तो असली क्या है वो समझना है, वह किसी एक चीज से हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्या है कि अब कभी लोग पूछते कि प्रतिबिंब है तो क्या इस भौतिक जगत में जो सब कुछ है वो आध्यात्मिक जगत में है, क्या आध्यात्मिक जगत में 84 लाख योनियां है, क्या आध्यात्मिक जगत में अभी हम आते हैं कि इस भौतिक जगत में पुरुष स्त्री का आकर्षण होता है वो क्यों है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान और उनकी कॉन्सोर्ट शक्ति जो है उनमें आकर्षण होता है, तो उसका यहाँ पे प्रतिबिंब आता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम इस जगत में कभी कभी कुछ लोगों में पुरुष पुरुष में आकर्षण होता है, तो क्या वो आध्यात्मिक जगत में है? तो अगर हम कहते हैं कि ये प्रतिबिंब है तो क्या इस जगत में जो भी है वो आध्यात्मिक जगत में है? नहीं, क्यों, क्या है, यह केवल प्रतिबिंब नहीं है, ये एक विकृत प्रतिबिंब है। तो कैसे होता है, एक्चुअली इसी उदाहरण का और विस्तार भागवतम के दशम स्कंद में दूसरे अध्याय में जब वसुदेव कृष्ण कंस को उपदेश कर रहे हैं तभी देते हैं, और तभी इसी वृक्ष का उदाहरण लेके और काफी वर्णन किया हुआ है, और वृक्ष की उपमा जो नहीं तभी वृक्ष की उपमा नहीं है तभी प्रतिबिंब की उपमा ली गई है, और वृक्ष की उपमा जो है वह देवता जो गर्भस्तुति करते हैं तभी वो ली गई है। तो वहां पर बताया गया है किस तरह से जब कोई चंद्र है आसमान में दिख रहा है और उसका प्रतिबिंब अगर पानी में होता है तो फिर जो पानी की लहरें जाती है तो वो चंद्रमा तो बिल्कुल गोल है पर यहां पर वो उसके अलग अलग रूप से दिखने लगता है। तो ये क्या है, ये अभी जो विकृत रूप है ये चंद्रमा का असली रूप असली में नहीं है, पर ये प्रतिबिंब में क्यों दिखता है, क्योंकि प्रतिबिंब में परिवर्तन होता है, जब प्रतिबिंब परिवर्तन होता है क्योंकि प्रतिबिंब में परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रतिबिंब जिस वस्तु में हो रहा है उस वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, मतलब पानी में परिवर्तन, पानी में प्रतिबिंब आ रहा है और पानी में अगर परिवर्तन होता है पानी हिलता है तो प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि इस भौतिक जगत में जो सब कुछ है वह आध्यात्मिक जगत में है, क्या है, आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ है, भगवान की प्रसन्नता केंद्र है और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत में है। पर जब भौतिक जगत में आता है आत्मा तो आत्मा अपनी अपनी कल्पना के अनुसार, विकृत कल्पना के अनुसार सोचता है कि ये करना है वो करना है, इससे आनंद मिलेगा उससे आनंद मिलेगा, और फिर उससे बहुत कुछ निर्मित होती है जो शुद्ध भाव में आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो इसलिए अभी ऐसे आज जरूरी नहीं है कि 84 लाख योनियां आध्यात्मिक जगत में होनी चाहिए। जो भी योनियां भगवान की प्रसन्नता के लिए चाहिए वो योनियां है भगवान। तो भगवान की से अभी आनंदा चौबीमान आता है कि आध्यात्मिक जगत में शेर भी है, पर वो शेर भी क्या करते हैं, वो भगवान की लीला का रस बढ़ाते हैं। तो कैसे, तो शेर गुर्राते हैं तो फिर भक्त जो होते हैं भगवान के आश्रय में आते हैं, उससे उनका जो सानिध्य है, उनका जो संग है, रस है, और बढ़ता है। तो जो भी भगवान के स्नेह, भगवान के रस, लीला का रस बढ़ाने के लिए आवश्यक है वो है। तो ये भौतिक जगत केवल प्रतिबिंब नहीं है, ये एक विकृत प्रतिबिंब है। तो ऐसे तरह से जो प्रतिबिंब हुआ है, अभी इस प्रतिबिंब में क्या बताया गया है कि प्रभुपाद जी ठाकुर लिखते हैं कि जो इच्छा है वह इच्छा वास्तव में पानी है। जीवात्मा के मन में भोग करने की इच्छा होती है, उसके कारण ये सारा प्रतिबिंब तैयार हो गए। अगर वो भोग करने की इच्छा नहीं होती तो यह प्रतिबिंब होता नहीं और यह वृक्ष भी नहीं होता। और फिर अभी अगले श्लोक में इसी प्रतिबिंब का और वर्णन किया जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतातस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। सो अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतः तस्य शाखा। तो क्या है, अभी कुछ शाखा जो है उसके, अभी शाखा अधिकांश रूप से नीचे जा रही है, स्वभाव में शाखा ऊपर जानी चाहिए, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि उल्टे है, शाखा नीचे जा रही है, पर कुछ शाखा ऊपर भी जा रही है और फिर कुछ मूल जो है नीचे भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इससे ये बताया जा रहा है कि जब ये भौतिक जगत में जब आत्मा आ जाता है तो उसका भ्रमण कहीं भी हो सकता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो कर्मा, फिर क्या बताया गया, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तो ये बताया था कि जो जिस चीज से वो वृक्ष बढ़ रहा है, जिससे उसको पोषण हो रहा है, वह क्या गुण है, विषय प्रवाला। और जो बढ़ रहे हैं वृक्ष, वो उसके उसमें क्या उगने वाला है, गुण विषय प्रवाला। तो विषय, इंद्रिय विषय जो आ रहे हैं वह उगने वाले हैं, और वह क्या है, अलग हम रूप रस जानते हैं कि अभी शाखाएं हैं, शाखाओं से क्या होता है, शाखाएं बड़ी होती है, उससे छोटे छोटे जो भाग होते हैं उसको ट्विग्स, जो कि छोटी सी शाखा होती है उसको टहनी 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 ओके तो टहनी जो ओके तो यह जो है वह विषय है। और इस तरह से मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये वृक्ष जब बढ़ता है तो उसमें और चीजें आती है जिससे कि व्यक्ति और मोह में फंस जाता है। तभी इसी भाव बंधन को वृक्ष के रूप में तुलना शंकराचार्य भी करते हैं अपने करुणा सूत्र में। वो कहते हैं, संसार वृक्ष बीज अनंत कर्म शाखायुतम कर्ण पत्र अनंग पुष्पम आरुह्य दुख फलिलं पतितं दयालो लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम। कहते हैं संसार वृक्ष के समान है, उसमें अघ बीजम पाप का बीज है, उसे शुरू हुआ है। संसार वृक्ष अघ बीज अनंत कर्म शाखा। तो इसमें क्या शाखा क्या है, अनंत कर्म है। अलग अलग प्रकार के कर्म जीवात्मा करता है और वो हर एक कर्म क्या है, वो शाखा बना रहा है, नई शाखा बन रहा है, वृक्ष और बड़ा होता जा रहा है और बंधन बढ़ रहा है। शाखा एकदम कर्ण पत्रम अनंग पुष्पम। तो उसमें क्या है, कर्ण मतलब इंद्रिया, वो पत्ते के समान है और जो इंद्रिय विषय है ये पुष्प के समान है। तो अभी उसमें थोड़ा सा अलग बताया गया उपमा, पर भाव यही है कि बंधन में फंसता है। अभी ये पुष्प से क्या आते हैं, अंत में फूल आते हैं, पुष्प मतलब फूल है, उससे आते फल आते हैं। तो फल के लिए व्यक्ति साधारणतया वृक्ष लगाता है, पर इसमें फल क्या आता है, वो बता रहे कि मैं इस वृक्ष पर चढ़ गया फल प्राप्त करने के लिए, आरुह्य, पर जो फल क्या था, दुख फलिलम, जो फल इसमें जा मिल गया दुख फलिलम, पतितम दयालो, हे दयालु भगवान प्रभु, अभी मैं पतित बन गया हूँ, बंधन में फंस गया हूँ। और फिर लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम, कृपया आप आश्रय प्रदान कीजिए मुझे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस तरह से ये वृक्ष में व्यक्ति फंसते जाता है और फिर कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, इस तरह से कर्म के कारण व्यक्ति बंध गया है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द है मनुष्य लोके। अभी ये मनुष्य लोके का क्या मतलब है कि अगर हम जानते हैं 84 लाख योनियां हैं, तो अभी 84 लाख योनियों में जलजान लक्षण स्थावर लक्षण आपको इस लोग पता है, तो उसमें देवतागण कहाँ आते हैं? 4 लाख मानव विषय मत, क्योंकि मानव योनि ये केवल एक शारीरिक बाह्य रूप नहीं है, चेतना का स्तर है। तो देवताओं में भी भगवत ज्ञान प्राप्त करने की चेतना है, चेतना के विकसित है वो। तो क्या है, स्वर्ग में वो वातावरण नहीं है कि तपस्या कर सके, पर स्वर्ग में भी वो भगवत और भावना भगवत चेतना की क्षमता तो उनमें है, वास्तव में मानव से भी अधिक है। जो कर्म बंधन है वो अधिकांश रूप से इस भौतिक जगत में होता है, भौतिक जगत में मतलब मृत्युलोक में होता है। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कर्म का नियम स्वर्ग में है ही नहीं, पर कर्म हम स्वर्ग में देखते हैं कैसे कि जैसे जब अर्जुन स्वर्ग में गए होते हैं और फिर उर्वशी वहां पर नृत्य कर रही होती, तो अर्जुन उर्वशी की ओर देखते हैं, तो इंद्र को लगता है कि अर्जुन उर्वशी की ओर आकर्षित हो गए, तो इसलिए वो उर्वशी से कहते हैं, संदेश भेजते हैं कि तुम अर्जुन से जाके मिलो। तो जब अर्जुन से मिलने जाते हैं तो और वह प्रस्ताव करती है कि हम संग करते हैं, तो तभी अर्जुन कहते हैं कि वास्तव में हाँ मैं तुम्हारे देख रहा था, पर मैं देख रहा था इसलिए कि मैं सोचा था कि तुम जो मेरे पूर्वज है पूर्व उनकी पत्नी हो, तो पूर्व तुमसे इतने आकर्षित हो गए थे तो इसलिए वो स्मरण करके मैं देख रहा था तुम्हारे, तुम तो मेरे लिए कुंती या शची जैसे है, माँ के समान हो। तो तभी उर्वशी कहती है कि ये सब नियम ये हम स्वर्गवासियों के लिए नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है तुम्हारे लिए नहीं हो गए, पर मैं पृथ्वी का वासी हूँ, मेरे लिए नियम नहीं है। तो बोलते नहीं अभी तुम स्वर्ग में हो, तो बोलते हैं नहीं फिर भी मैं तो मुझे नैतिकता का पालन करना होगा। तो यहाँ पे क्या बता है कि मतलब क्या अलग अलग योनियों अलग 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 योनियों के लिए योनिया ने क्या है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लोगों में नैतिकता के नियम अलग होते हैं। तो जो अगर देवता लोग अप्सराओं के साथ संग करते हैं तो उसमें पाप नहीं होता है, पर इसका मतलब नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। वहां पे भी जब इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के कोई आकर्षित होता है क्या होता है, उनको शाप लग जाता है। तो मतलब क्या है कि इस भौतिक जगत में सब जगह पे हमें वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शंस, हमारे कार्यों के लिए हम जिम्मेदार हैं, पर जो कार्य करने की सुविधा जो है और सुविधा स्वर्ग लोकों में है, तो उसमें और लाइसेंस है और फ्रीडम है एक तरह से, पर फिर भी अंत में हम सब हमारे कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकांश रूप से स्वर्ग स्वर्ग से कोई व्यक्ति दुष्कर्म करने से पतन नहीं होता, अधिकांश रूप से अगर स्वर्ग से किसी का पतन होता है तो वो पाप से होता है, पाप से नहीं होता है शाप से होता है। मतलब क्या, कोई किसी ब्राह्मण को अपसन्न कर देता है, क्रोध कर देता है, ब्राह्मण शाप दे देता है। तो जो अधिकांश रूप से कर्म जो होता है पाप और पुण्य वह इस लोक में होता है, और ऊपर के लोग जो है वह हमारे कर्म बंधन को हमें कर्मिक बैलेंस को कर्म का जो बचा हुआ है उसको खर्च करने के लिए। तो अभी नीचे के लोकों में भी लोग नया कर्म नहीं करते, नीचे जो जो बुरा कर्म किया है उसका फल मिलता है नीचे के लोकों में, और स्वर्ग लोकों में अच्छा कर्म किया उसका फल मिलता है, तो और नया कर्म वहां पे उत्पन्न नहीं होता है। तो साधारणतः हमारा जो कर्म होता है वह तीन तरह से या तीन जगहों में हमें मिलता है। अगर मानव योनि में कोई व्यक्ति है तो मानव योनि से अगर वो निकलता है तो दूसरे लोकों में फल मिल सकता है, अगर से नर्क में जाएगा तो नर्क में फल मिल सकता है कुछ, उसके बाद में निचले लोकों में फल मिल सकता है या निचले योनियों में फल मिल सकता है, मतलब कोई जानवर योनि में जाएगा, कुत्ते योनि में जाएगा, चूहे में जाएगा वैसे, और फिर उसके बाद में कुछ फल जो होता है बाद में मानव योनि में जब आएगा बचा हुआ फल वह मानव योनि में मिल सकता है। तो क्या होता है, यह सब जो है उपदृष्टा हनुमंता जो भगवान के अध्यक्षता में होता है। तो ऐसे नहीं है कि स्वर्ग में जाने से नर्क में जाने से सारा पुण्य या पाप खत्म हो जाता है, कुछ कुछ वो यहाँ पे मिलता है, कुछ कुछ अलग अलग जगह पे मिलता है, पर अधिकांश जो कर्म किया जाता है वह कर्म जो होता है मानव योनि में करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोला करते हैं कि शेर अगर कोई हिरण को खाता है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता उसको, कि स्वभाव से कर रहा है, वो नया कुछ कर्म नहीं कर रहा है। तो कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। और फिर अभी अर्जुन को सवाल आता है कि यह बता रहे हैं कि कुछ कुछ शाखाएं ऊपर जाती है, कुछ शाखाएं नीचे जाती है, और गुण यह है, और जो गुण यह है कि यह इसके जल है और विषय इसके जो पन्ने हैं, वेदों का छंद है, ये काफी मुश्किल लगा समझने का। हाँ, ये बहुत ही मुश्किल लगा समझने का। भगवान बोलते हैं न रूपमस्येह ततो उपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। तो न रूपमस्येह ततो उपलभ्यते, ये जो रूप है इसका उपलभ्यते समझना बड़ा मुश्किल है। क्या नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, इसका अंत कहाँ है, शुरुआत कहाँ है, इसका मूल कहाँ है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। और ये ऐसे कहाँ है, ये भगवान 11वें अध्याय में जब अपना विश्व रूप दिखाते तभी अर्जुन ऐसे भगत नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कहाँ शुरुआत है कहाँ अंत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वही भाव है। और क्या है वो विराट रूप भी क्या है, विश्व रूप जो है वो वास्तव में एक एक ही तरह से विश्व रूप जो है वह एक प्रकार से भौबंधन के बारे में वर्णन किया गया है, भौतिक अस्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है, और यहाँ पे भौतिक अस्तित्व के भौतिक जगत के बारे में वर्णन कर सके। तो क्या है ये भी एक तरह से अनंत है। अभी कभी कभी बताते हैं कि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो अगर भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है तो क्या ये भौतिक जगत भी अनंत है, और अगर ये भौतिक जगत अनंत है तो फिर हम कल शास्त्र ने भी बताया कि भौतिक जगत एक चौथाई है और आध्यात्मिक जगत तीन चौथाई है। तो फिर अगर भौतिक जगत एक चौथाई है और भौतिक जगत अनंत है तो फिर अनंत का चार गुना क्या मतलब है, अनंत अनंत ही हो गया ना। तो ये कैसे है, ये इसमें प्रमाणात्मक है कि ये प्रमाणात्मक नहीं है, तो वास्तव में कैसे है ये प्रमाणात्मक है, इसको अभी मैं हिंदी में समझा नहीं पाऊंगा। तो जो इसमें इनफाइनाइट सेट्स थियरी होती है, तो अभी क्या होता है अगर आपको इन देयर सेट ऑफ होल नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे सारे अंक है, तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट है, पर इसमें से अगर मैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेता हूँ 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से लेता हूँ तो ये भी इनफाइनाइट है। और फिर मैं अगर सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेता हूँ 1 3 5 7 11 13 17 23 ये भी इनफाइनाइट है, पर फिर भी तीनों इनफाइनाइट है, तीनों असीमित है, पर क्या है द सेट ऑफ ऑल नंबर्स इज ग्रेटर देन द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स व्हिच इज ग्रेटर देन द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो इवन इन इनफिनिटी देयर कैन बी ग्रेटर इन्फिनिटी एंड स्मॉलर इन्फिनिटी। तो ये भौतिक जगत भी असीमित है पर आध्यात्मिक जगत उससे बड़ा असीमित है। तो इन्फिनिटी में हम हमारा साधारण लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते अनंतता में, इसलिए अनंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, इसका अंत मध्य और ये समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, जयदेव भारत लिख लिखा था कभी, एक बार क्या हुआ था इस्कॉन में कि कुछ लोग कह रहे थे कि आत्मा जो है आध्यात्मिक जगत में कभी था ही नहीं, आध्यात्मिक जगत से नहीं गिरा है, वो कहीं और से आया है। और जो ये बता रहे थे कुछ आधार मत नहीं थे, ये इस्कॉन के उस समय के सबसे बड़े पंडित थे, संस्कृत पंडित थे, तो उन्होंने बड़ा ग्रंथ भी लिख दिया इसके बारे में। तो फिर उसमें बड़ा वाद विवाद हो गया कि उनका कहना था कि ये प्रभुपाद जी ने, क्योंकि पाश्चात्य देशों में लोगों की चेतना जो थी वो इतनी विकसित नहीं थी, तो उनको हौसला बढ़ाने के लिए ये क्या, हाँ आप आध्यात्मिक जगत से वापस जा सकते हो, आप वहाँ पे पहले थे आप वहाँ पे, ऐसे हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे बताया था, पर वास्तव में कहीं ऐसे शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि हम आध्यात्मिक जगत में थे। तो यह तो उन्होंने बड़ा ग्रंथ लिख दिया, अनेक शास्त्रों से कोट करके लिखा, तो नॉट अ लीफ फॉल्स फ्रॉम वैकुंठ, कह रहा था कि एक पत्ता भी वैकुंठ से नहीं गिरता, ऐसे नाम का उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। तो फिर उसके बाद में तो जीबीसी ने जो क्या, जीबीसी के बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने सब मिलके उसका खंडन करने के लिए एक ग्रंथ लिखा, उसका उसका नाम था आवर ओरिजिनल पोजिशन। तो कहीं कर्मा भूमि में किताब लिखा, फिर जी पी सी में किताब लिखा है, और अनिल पुष्य ने दो किताब है। तो फिर उसका जयद्रथ महाराज ने एक आर्टिकल लिखा था बैक टू वर्ल्ड, सिंपल कि उन्होंने क्या लिखा, डोंट फिगर इट आउट गेट आउट। तो डोंट फिगर इट आउट, ये सब जो है समझते जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, महत्वपूर्ण क्या है गेट आउट। तो क्या है, अश्वत्थमेनम सुविरूढ मूलं असंग शस्त्रेण गृहेण चित्वा, बात है कि ये समझ नहीं जाएंगे तो नरूपमस्य तोपलभ्य थे, समझ नहीं पाओगे, महत्वपूर्ण क्या है चित्वा। इसमें से अभी ये जो कोई कहेगा कि इतना बड़ा वृक्ष है इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, तो वृक्ष को नहीं तोड़ना है, हमारा जो बंधन है उस वृक्ष को हम उसको तोड़ना है। हम सारे वृक्ष को नहीं तोड़ सकते हैं, पर हमारा जो बंधन है उसको तोड़ना है, और उसके लिए क्या है शस्त्र, असंग शस्त्र। अभी शस्त्र की उपमा जो है कई बार आती है शास्त्रों में, भगवद्गीता में दो बार आती है, भागवतम में एक बार आती है, भागवत में कई बार आती है पर हमारे लिए हम एक बार देखते हैं। भगवद्गीता में शस्त्र की उपमा कहाँ आती है, नहीं वो उपमा नहीं है, तो बताया जा रहा है कि शास्त्र शस्त्र जो कोई भी शस्त्र, हाँ कोई जो नैव चिंतन शस्त्र, कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता है, तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान आसीन आत्मनः। चौथे अध्याय के 42 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ज्ञान जो है वह एक शस्त्र है, और इस ज्ञान के शस्त्र के द्वारा आप अज्ञान को मिटाओ और फिर आप उठो, कार्यशील हो जाओ। तो ज्ञान को शस्त्र के रूप में वहां पर बताया गया है, यहां पे क्या बोला है असंग, असंग मतलब वैराग्य, इसको बताया एक शस्त्र के रूप में। भागवतम में अगर हम जाएंगे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया, यद अध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधन छिन्दन्ति कौविलस्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम्। वहां पे भगवान का स्मरण जो है उसको शस्त्र बताया है। तो अभी तो फिर क्या शस्त्र है, वास्तव में ज्ञान शस्त्र है या वैराग्य शस्त्र है या भगवान का स्मरण शस्त्र है, तो सभी सत्य है, क्योंकि वही भागवत में अगर हम जाते हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, वहां पे बताते हैं कि अगर भक्ति होगी, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनित्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। तो मतलब क्या है, जहां पे भक्ति होगी भगवान का स्मरण होगा वहां पे ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाएगा। तो क्या है, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों भी शस्त्र है, पर वो दोनों शस्त्रों को पकड़ के लेके युद्ध करने जाओगे एक ही शस्त्र पकड़ लो उसे दोनों वापस आ जाएगा अपने आप। क्या है, एक शस्त्र है भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण कर लेगा तो उससे ज्ञान भी आ जाएगा उससे वैराग्य भी आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वो एक युद्ध के समान है, असंग शस्त्रेण। अभी यहाँ पे शस्त्र बताया गया है, पर प्रभुपाद जी भाषांतर जब करते हैं तो कई बार यहाँ पे दूसरी जगह पे वो एक्स बोलते हैं। अभी एक्स का तो संस्कृत कुल्हाड़ वगैरह होगा, तो शस्त्र को कोई धनुष मान लो तलवार बोल सकता है, पर क्या है वो भाषांतर भी होता है, वह संदर्भ के अनुसार करना है। अगर किसी को पेड़ काटना है तो तलवार लेके या धनुष मान ले कुछ फायदा नहीं है, उसके लिए कुल्हाड़ चाहिए। तो इसीलिए उचित शस्त्र क्या है, एक्स कुल्हाड़ है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। अभी कई मायावादी लोग कहते हैं कि हाँ भवबंधन से मुक्त हो गया, अभी खत्म हो गया, वहां बोलते नहीं उसके बाद में भी कुछ करना है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्, पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूया, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो ततः पदम, और वहां पे ऐसा काट दिया है बहुत जगत ने हमारे बंधन को, उस पद को प्राप्त करना है। उस पद की क्या विशेषता है, यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूया, वहां पर जाने के बाद पुनः व्यक्ति यहाँ पे नहीं आएगा। तो उस पद को प्राप्त कर लिया, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में भी और कुछ है बोलते भगवान कि तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वहां पर जाने के बाद भी क्या है, उस पुरुष को शरण जाओ। मतलब सिर्फ भवबंधन को मुक्त करो जरूरी नहीं, पर्याप्त नहीं है, भवबंधन को मुक्त होने के बाद एक परम पुरुष है उसके शरण में जाना है आपको। और वो पुरुष क्या लक्षण है, उसका लक्षण है यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुरानी, उससे ही सब कुछ आया है। और अभी यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, वो खुद को थर्ड पर्सन में उल्लेख कर रहे। थर्ड पर्सन मतलब कि मैं तुम और आप, नहीं वे वो, मैं तुम और वो। तो मैं ये फर्स्ट पर्सन हो गया, प्रथम पुरुष है, तुम ये द्वितीय पुरुष है, और वो ये तृतीय पुरुष है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, जब भगवान ज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण जब कर रहे होते हैं, तभी ये क्या करते हैं, कई बार वो परम सत्य को उल्लेखित करते हैं, तो भाई तृतीय पुरुष मिलते हैं, उस पुरुष को जाके आप शरणागत हो जाओ। पर वहां पर भगवान लक्षण देते हैं, कोई ध्यान पूर्वक सुन रहा होगा तो क्या होता है, अब भगवान ने पहले बता चुके अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवते, तो उससे स्पष्ट है। अभी अगले श्लोकों में भगवान स्पष्ट करेंगे वापस में। तो कभी क्यों भगवान ऐसे करते हैं, क्योंकि संदर्भ के अनुसार है। कैसे, संदर्भ क्या है कि जो साधक है उसकी चेतना का जो स्तर है, उस चेतना के स्तर के अनुसार भगवान बताते हैं। तो अगर जब ज्ञानियों की चेतना के अनुसार ज्ञानियों को बता रहे, तो ज्ञानियों को पहले से पता नहीं है कि ये भगवान परम सत्य है, तो उनकी दृष्टि से भगवान बताते हैं, तो फिर वो परम सत्य को उल्लेखित करते समय तृतीय पुरुष, वो जो परम सत्य है, उसके शरण में जाओ। पर अभी भगवान बताएंगे कि वह जो शरण में कैसे जाना है, शरण में जाएंगे तो फिर अभी तो शरण में जाना है तो क्या करना चाहिए व्यवहारिक रूप से, उसका वर्णन आता है अगले श्लोक में। निर्माण मोहाजित संग दोषा,
निर्माण मोहाजित संग दोषा,
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः,
अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः,
द्वंद्वैर मुक्तः सुख दुःख संज्ञैर,
द्वंद्वैर मुक्तः सुख दुःख संज्ञैर,
गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम् तत्,
गच्छन्ति मूढा पदमव्ययम्
तत्। तो निर्माण मोह, तो मान का जो मोह है कि मैं ये हूं मैं वो हूं, वो निर्माण मोह। प्रभुपाद बोलते शरणागति को इस तरह प्रभुपाद जी बोलते कि शरणागति को बहुत सुंदर रूप से बताया गया है। और जित संग दोषा, तो मोह क्यों आता है, संग के दोष के कारण आता है। अभी देखिए वही शब्द आया था 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में, क्या आया था, कारण गुण संगोस्य, गुण संगोस्य। और यहां पे भी 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान क्या बताया, असंग शस्त्रेण, तो संग से बंधन में फंस गया था और असंग से बंधन से निकल जाएगा। तो यहां पे क्या बताया, जित संग दोष, संग से क्या होता है, संग से मुझे ये अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो इससे हमें मुझे मुक्त होना, जित संग दोष। फिर आध्यात्म नित्या, संग के दोष में नहीं पड़ना है, तो फिर क्या, सदैव अगर मैं स्मरण करता हूं मैं आत्मा हूं, तो फिर क्या, ये अच्छा है ये बुरा है उसके द्वंद्व में फंसूंगा नहीं। और फिर विनिवृत्त काम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम, ऐसा काम का त्याग करने को नहीं बोल रहे भगवान, बोले विनिवृत्त काम, निवृत्त मतलब क्या, रिटायर हो जाना। तो ये क्या है, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण है कि कैसे होता है कि जो काम वासना है वह तुरंत चली नहीं जाएगी। तो मान लीजिए किसी ने कोई पालतू कुत्ता रखा है बहुत समय से, और वो कुत्ता उसके साथ ही रहता है हमेशा, और उसको उसको वो आलिंगन करता है, उसको अपने बिस्तर पे सुलाता है, बहुत प्रेम करता है उसको, तो फिर क्या होता है, ऐसे हो रहा है और फिर बाद में उसको बोलता है कि कुत्ते को खतरनाक बीमारी हो गई, रेबीज हो गया, तो अभी ये कुत्ता अगर उसका स्पर्श करेगा तुमको, तुमको भी बीमारी हो जाएगी, कुत्ते को दूर करो। अभी उसे पता था कुत्ते को दूर करो, तो क्या होता है, वो कुत्ता आता है हम जाके समझ चले जाने, तो कुत्ते को लगता है कि मेरा मालिक उसे खेल रहा है, तो वापस आता है वो, कुत्ता सामने आ जाता है, तो फिर क्या होता है, स्नेह से कुत्ता सामने आता है तो मालिक का क्या होता है, हृदय पिघल जाता है, और एक बार उसको प्रेम से स्पर्श कर लेता है, ओ कुत्ते को अभी मेरा मालिक खेल रहा है मेरे साथ, तो फिर क्या होता है, बाद में पांच बार में उसको हड़ हड़ बोला तो उसको लगा हाँ बस खेल ही रहा है मेरे साथ, बाद में मुझे क्या करेगा, वह आलिंगन कर लेगा, मुझे पास में ले लेगा। तो क्या है, अगर उसको कुत्ते को दूर भेजना है तो जब भी वो कुत्ता आता है उसको जब भी वो आता है उसको बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के उसको हड़ बोल दे, तभी उनको समझ में आ जाएगा कि मैं जब भी आऊंगा मुझे यहां से ठुकरा दिया जाएगा, तो फिर वो चला जाएगा। तो उस तरह से क्या है, निवृत्त काम। तो क्या काम वासना आती है, हमने पहले ही काम वासना को आलिंगन किया था। सोच बहुत से लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि काम वासना को और बढ़ाना ही जीवन का उद्देश्य है, कि उसमें ही आनंद है बड़ा, और फिर अभी हम समझ जाते हैं काम वासना पाबंदी का कारण है, इसलिए उसे दूर रहना चाहते हैं। पर जब दूर रहना चाहते हैं तो क्या होता है, कभी कभी दूर रहते हैं पर जब कहीं मौका मिल जाता है, किसी को पता नहीं चलने वाला है, तो प्रलोभन में फंस जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो काम वासना जाती नहीं है, कुछ समय के जाती है पुनः आती है। तो जब भी आती है उसको नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, उससे क्या होगा, फिर वो एक समय चले जाएगी। विनिवृत्त काम, निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, विनिवृत्त मतलब कंप्लीट इरिवर्सिबल रिटायरमेंट, विनिवृत्त विशेष रूप में निवृत्ति। तो वी हैव टू रिटायर फ्रॉम लस्ट बिफोर लस्ट विल रिटायर फ्रॉम अस। क्या हमें पहले लस्ट को नहीं, काम वासना को नहीं बोलना है, नहीं, फिर बाद में वो चल जाएगी। तो विनिवृत्त काम, हाँ ये वैसे होगा, तो गच्छन्ति मूढ़ा, अमूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति नहीं है, अमूढ़ है, वह गच्छन्ति कहाँ जाएगा, पदम व्ययम तत्, वह परम पद जो है उसको प्राप्त करेगा। अभी वह परम पद क्या है उसका वर्णन भगवान करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो न तद्भासयते सूर्यो, तो भगवान बता रहे हैं कि उसको उस जगत में, अभी भगवान बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत प्रिसाइज, बिल्कुल सही रूप से, ऐसे नहीं बता रहे हैं कि उस जगत में सूर्य नहीं है, उस जगत में चंद्र नहीं है, वो बता रहे उस जगत में रोशनी देने के लिए, न तो भासयते सूर्यो, उस जगत में रोशनी देने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्र की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, वहां पर सब तेजमान है, स्वयं तेजमान है। और फिर अब इसका एक और अर्थ बताते हैं हमारे आचार्यगण कि यह जो है सम्मो, अगर प्रतीकात्मक से देखते हैं तो क्या है कि पहले अभी बताया था, दो श्लोक तीन श्लोक पहले बताया था कि कैसे न रूपमस्य है तो उपलभ्य थे। तो अगर ये भौतिक जगत का रूप समझ नहीं सकते तो वो आध्यात्मिक जगत का रूप क्या समझेंगे हम। तो न तद्भास है ते सूर्य, तो सूर्य जो होता है, सूर्य हमें रोशनी देता है, फिर उससे हम देख सकते हैं। तो सूर्य जो है वो हमारे आंखों से देखने के लिए संबंधित होता है, उससे महत्वपूर्ण है। उस तरह से न शशांको, तो चंद्र जो होता है, जानते हैं कि आयुर्वेद में वगैरह बताया कि चंद्र हमारे मन से संबंधित होता है, मन के अधिष्ठाता देव जो होता है चंद्र होता है। और न पावकः, जो अग्नि होती है वह वाणी संबंध होती है। कैसे होता है कि कैसे होता है कि ओजस्वी वक्ता है वो, ही गिव्स अ फायरी स्पीच, तेजस्वी वक्त, तेजस्वी भाषण दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो धाम है वो व्यक्ति अपने आंखों से देख नहीं सकता है। न तद्भासयते सूर्य का अर्थ क्या है कि वो आंखों से देख नहीं सकता है। न शशांको, उसका मतलब क्या है, मन से उसका चिंतन नहीं कर सकता है। और न पावकः, वह अपने वाणी से उसका वर्णन भी नहीं कर सकता है। पर फिर भी वो सर्वाकर्षक है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च है वो, और उसी को प्राप्त करना है। अभी ऐसे ही वर्णन पहले भगवान ने कहा था कि आत्मा को भी समझा, अचिंत्यो यम कार्यो यम अचिंत्यो यम बताया था, तो वही यहाँ पे बता रहे हो। और फिर यहाँ पे हम वापस प्रभुपाद जी के भाषांतर का महत्व देख सकते हैं, कि क्रूरता देख सकते हैं। कैसे हम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसको वहाँ वो आध्यात्मिक जगत में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कि विद्युत भी नहीं है, कोई कहे यहाँ पे कोई विद्युत के कोई शब्द नहीं है। तो प्रभुपाद जैसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, क्या है कि जब भाषांतर होता है तो जब शास्त्र का कोई भी भाषांतर किया जा रहा है तो उसको समझ, उसको भाषांतर करते समय एक दो चीजों को समान रखना पड़ता है, एक है प्रिसिशन और दूसरा है रेलेवेंस। प्रिसिशन मतलब It's okay. Keep trying, try then, otherwise forget it. So, तो हम कैसे चेक रहे थे?
Precision and relevance.
हाँ, तो precision मतलब क्या? बिल्कुल सही रूप से जो सत्य है उसको समझाना, बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी फर्क के बस समझाना उसको, precision उसको कहते हैं. और फिर relevance मतलब क्या? इस तरह से समझाना कि वो व्यक्ति सही क्या है वह समझ पाए, नहीं उसका उसका जो संबंध है वह स्पष्ट हो जाए, क्योंकि वो इस तरह से बताए कि व्यक्ति को समझ में आ जाए. तो precision और relevance दोनों को साथ में रखना चाहिए. इसका मतलब एक और बार अगर मैं लेता हूं, तो अगर मैं मान लीजिए कि मैं बताऊंगा कि अभी जो भगवान की लीला है उसमें चैतन्य महाप्रभु 7 जगह पे 8 जगह पे एक साथ कहते थे, तो यह हमें समझाना है. आपको पता है क्वांटम फिजिक्स में नॉन लोकैलिटी नाम का एक फेनोमेना होता है, और उसमें क्या होता है, मेसोन्स होते हैं, वो मेसोन्स 10 जगह पे एक साथ आ सकते हैं. तो अगर कोई व्यक्ति इसको हिंदी में भाषांतरित करना है, मतलब क्वांटम फिजिक्स का क्या अर्थ है, फिर उसके बाद में नॉन लोकैलिटी का क्या अर्थ है, मेसोन्स क्या है, अभी क्या है इसका, अगर शब्दशः शब्द भी हिंदी में लेके आएंगे, पहले होगा कि नहीं पता नहीं, होगा भी तो भी वो शब्द किसी को पता नहीं होगा. तो फिर क्या है, समझाना है तो वास्तव में ये दोनों को बैलेंस करना है, कि सबसे पहले जो बताया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से वो अच्छी से समझना चाहिए, फिर उसके बाद में वह कैसे समझाना. तो ये मतलब क्या है, ये शिक्षक शिक्षक जो होता है, शिक्षण में दो विभाग होते हैं, समझना और समझाना. समझना पहले महत्वपूर्ण है, फिर समझाना है. तो समझना मतलब उससे हम क्या, हम खुद समझाते हैं, प्रसिशन है उसमें कि ये बताया जा रहा है यहाँ पे. समझाना मतलब उसमें रेलेवेंस आता है, कैसे तरह समझाया जाए. तो क्या है यहाँ पे जोर क्या है इस श्लोक में, अगर हम देखेंगे कि जोर यहाँ पे ये है कि सब कुछ स्वयं तेजवान है वहां पे, किसी भी और बाह्य चीज की रोशनी की जरूरत नहीं है उसमें. तो जो स्वयं तेजवान है सब कुछ, वह समझाने को बताने के लिए अभी लोगों को बताया गया कि जो वहां पे चंद्र की जरूरत नहीं है, सूर्य की जरूरत नहीं है. अभी कई लोगों को होता है कि लोग जीवन भर रहते हैं, वो हमेशा घर के अंदर रहते हैं, शहरों में बाहर जाते हैं तो भी वो सूरज को देखते भी नहीं, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग होते, तो उनको पूछेगा रोशनी कहाँ से आती है, बोले बटन के स्विच से आती है. उनको पता ही नहीं है रोशनी है. कई बार लोगों को लगता है दूध कहाँ से आता है, फ्रिज से आता है, दूध गाय से आता है, उनको पता ही नहीं होता है. तो क्या होता है यहाँ पे आजकल के समाज में, जो सब लोगों के लिए रोशनी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है. तो इसीलिए वह जो भाव है समझाने के लिए, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह जो है इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मतलब कोई भी कृत्रिम रोशनी की जरूरत नहीं है वहां पे, सब कुछ स्वयं ज्योतिमान है. और फिर आगे बता रहे यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त कर लिया तो वापस पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आएगा. तद्धाम परम मम, वह मेरा परम धाम है. और फिर प्रभुपाद इसके तात्पर्य लिखते हैं किस तरह से जीवात्मा इस भौतिक जगत में बंध गया है, और उसका वर्णन. तो अगर कोई कहेगा कि अगर वह धाम हमारा शाश्वत धाम है, उसको प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, तो हम यहाँ पे फंसे कैसे हैं? पहले तो बताया एक प्रतीकात्मक रूप से, पर अभी तत्वज्ञान के रूप से बताते हैं कि कैसे जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंस जाता है. वो उसकी प्राप्ति तो करनी है, पर उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे क्यों है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. तो ममैवांशो जीवलोके, जो सारे जीव है वो मेरे अंश है, और इस भौतिक जगत में वे बंधन में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि मना शष्टानि इंद्रियाणि, मन और इंद्रियों के साथ साथ वह कर्षण कर रहा है। मन और इंद्रिया कहते हैं ये देखो इससे आनंद मिलेगा, ये करो उससे आनंद मिलेगा, ये करो उससे आनंद मिलेगा। इस तरह से जीवात्मा ये भौभगत में फंस जाता है। तो वी आर मेंट टू बी अपार्ट, वी आर नॉट मेंट टू बी अपार्ट, वी आर मेंट टू बी अपार्ट। हम भगवान के एक अंश है तो उससे रहे तो हम सुखी रहेंगे, पर क्या होता है हम अपार्ट, हम भगवान से तो अलग हो गए तो फिर क्या होगा, हम पुनः शष्टानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति कर्षति, हम बंधन में फंस जाएंगे। तो प्रभु ये तात्पर्य लिखते हैं कि कैसे जीवात्मा जो है जंजीरों से बांधा गया है, ऐसे बांधा गया है इस जगत में, और जो मन है उसको कोसते रहता है ये करो वो करो, और इस तरह से फंस गया है। और तीसरे तात्पर्य प्रभु जी भी लिखते हैं कि जो वैराग्य जो है वह केवल एक सैफरन ड्रेस पहनने की बात नहीं है, वह वास्तव में भगवान के प्रति आकर्षित होने की बात है। वह वास्तव में भगवान को प्राप्त करने की भगवान को इज देयर समवेयर यहाँ पे परपोर्ट में it's not about wearing saffron dress. Not there. I'm sure it must have been there. What is the date today? Today is 23rd, na? 24th. Oh God. See. I supposed to read yesterday's. I did it today's. So, narupamasya ktopnonu. Pamayivamsho. Okay. How come it's not there? It's a very important sentence. It's
not there in this
one. Really?
Okay.
Saffron dress.
I know.
Kaha?
Not there.
Not there, huh?
Vaha se yate usne.
Pichle parvod mein kya wo? Okay, okay. Haan, haan. Yahan pe dekho.
Haan,
in this way, he cannot. Okay, okay, okay. जीवात्मा जो है वह इस भौतिक जगत से बंधन से निकलना है तो वह किससे निकल सकता है, वह केवल सैफरन ड्रेस स्वीकार करने से निकलता नहीं है, उसको अनासक्त होना है। असक्त क्या है वो, ही कैन नॉट कट ऑफ दिस अटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड सिंपली बाय ड्रेसिंग हिमसेल्फ इन सैफरन क्लॉथ। उसके लिए क्या है, वास्तव में भगवान को आसक्त, भगवान से आसक्त होना है। और फिर इसके बाद में भगवान बताते हैं कि ठीक है जीवात्मा भी कर्षति, कर्षति मतलब बहुत बहुत समस्या में है, तो वो समस्या क्या है, किस तरह से कर्षति है, किस तरह से पीड़ा में है, उसका वर्णन अगले श्लोक में आता है। कर्षति कैसे, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। तो एक शरीर प्राप्त करता है आत्मा और फिर दो शरीर त्याग करके दूसरा शरीर प्राप्त करता है, तो कैसे है, वायुर्गन्ध। तो जब वायु जो होता है, वायु तो शुद्ध होता है, पर कोई गंदी जगह से आता है तो गंदी दुर्गंध उसमें आ जाती है, कोई अच्छी सुगंधित जगह से आता है तो वहाँ पे सुगंध आ जाती है। तो वैसे ही आत्मा जिस वातावरण में रहता है
उस प्रकार से उसकी वासनाएं, उसकी संकल्पनाएं, उसकी विचारधारा हो जाती है, उसके अनुसार जीवन उसको मिलता है। तो भगवान यहाँ पे वायुर्बंधन से क्या उदाहरण से बता रहे हैं कि आत्मा जो भौतिक जगत है उसमें फर्क है, और जो आत्मा और उसका मन और मनोवृत्ति है उसमें फर्क है। पर वो मनोवृत्ति कैसे आत्मा को लग जाती है, संग के कारण। संग के कारण जब ऐसे लग जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, गृहित्वैतानी संयाति, वो एक शरीर प्राप्त करता है, उस शरीर प्राप्त है दूसरा शरीर प्राप्त करता है, और इस तरह से श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च, तो अभी मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति बताता, तो कर्षति कैसे है वह आठवें श्लोक में बताया। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि वो कैसे है वो श्लोक में बताया है, किस तरह से जो छह इंद्रिया है, पांच इंद्रिया और मन, उनके कारण जीव आत्मा बंधन में फंसा हुआ है। तो वास्तव में भी ये पांच उंगलियां है और उसके बीच में क्या है, हाथ का बीच वाला विभाग है। तो उसी तरह से पांच इंद्रिया है, श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसनम, और वो सब क्या है, मन के अधीन है, अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। तो क्या करता है व्यक्ति, वो जीवात्मा जो है वह बंधन से विषयों की सेवा करता है, विषयों की सेवा करता है, जो इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों से आकर्षित होके मन में संकल्प आते हैं मैं ऐसे भोग करूंगा, ऐसे भोग करूंगा, और फिर विषयों के पीछे भागता है। इस तरह से मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कर्षण में पड़ा हुआ है, बड़े ही पीड़ा में है। तो अभी इससे बाहर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए भगवान बताएगा कि यह ज्ञान चक्षु चाहिए। तो वो बताइए अगले श्लोक में आता है, शरीरम यदवापनोति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो शरीर उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, तो कैसे शरीर को त्यागता है वो, कैसे शरीर में रहता है, भुञ्जानं वा गुणान्वितं, और गुणों के अधीन वो कैसे भोग करता है, यह सब जो है वास्तव में वो समझ में नहीं आता है। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, जो मूढ़ है वो समझ में नहीं आता है, और समझना तो क्या करना चाहिए, उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। पर तीन तो साधारणतः बंधन जब होता है ना तो हम कल्पना करते हैं कि कोई रस्सी से बांध दिया गया है, और अभी अभी कोई दीवार से या खंभे से बांध दिया है, वो निष्क्रिय हो गया है। बट आवर बॉन्ड्स are not the prisoner's shackles, our bonds are the puppeteer's strings। में फर्क क्या है, जो जो हमारे बंधन की बंधन जो है ना वह कोई कैदी का जंजीर नहीं है। साधारण कैदी का जंजीर जो होता है वह जंजीर के कारण वो निष्क्रिय हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, पर हम तो निष्क्रिय नहीं है। हमारा जो बंधन क्या है वो कठपुतली की जो दौरे है उसके समान है। अगर कठपुतलियां बहुत कुछ कार्य कर रही होती, इधर जा रही है, ये कर रही है, हंस रही है, गा रही है, रो रही है, सब कुछ कर रही होती, पर क्या है वो सब कुछ नियंत्रित है। तो जो तीन गुण है वो क्या है, वो निष्क्रिय करने वाली जंजीर नहीं है, वो नचाने वाली दोरी है वो। तो इसीलिए ये बंधन है समझना आसान नहीं है, पर बंधन है अदृश्य है और वो निष्क्रिय नहीं रखता हमको, हमको गलत दिशा में कार्यशील बना देता है। इसीलिए पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु चाहिए। तो अभी आजू का सवाल आता है यहाँ पे कि ठीक है ज्ञान चक्षु चाहिए, तो सबको ये ज्ञान चक्षु क्यों प्राप्त नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको प्राप्त करना है, हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, क्यों नहीं होता है, वो भगवान बताते हैं अगले श्लोक में, तन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनम्। तो वह योगी जो यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, पश्यन्ति वो देख पाते हैं, कौन से योगी, आत्मन्यवस्थितम्, जो आत्मा के स्तर पे जीना चाहते हैं, जो आत्मा के स्तर पे कार्य करने का प्रयास करते हैं, और इतंतो अपि अकृतात्मानो, पर जो आत्मा के स्तर पे नहीं है वह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि नैनम पश्यन्ति अचेतसा, अचेतसा मतलब उनकी दृष्टि कहीं और चली गई है। तो क्या होता है, जब हमारी दृष्टि भौतिक तत्वों में होती है तो हम समझ नहीं पाते, जब आध्यात्मिक तत्व में होती है तभी हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक तत्व में पहुंचना है। कैसे होता है कि व्यक्ति अगर बहुत इंद्रिय तृप्ति में लगा होगा, तो इंद्रिय तृप्ति में जब लगा होता है व्यक्ति, तभी उसकी आध्यात्मिक दृष्टि रहती नहीं है। भगवान ने पहले भी बताया दूसरे अध्याय में, भोगेश्वर प्रसक्तानां तया अपहरित चेतसा, यहां पे भी अचेतसा। क्या होता है कि जब हमारी जैसी इच्छा होती है वैसे ही हमको दिखता है सब कुछ। आपको बताया कि एक व्यक्ति था, उसको दर्शाना था कि शराब कितने खराब होती है, तो उसने प्रयोग करके दिखाना सोचा। उसने कहा क्या कि वो लोग बोला कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, तो उसने देख प्रयोग करवाया और क्या बोला, देखो शराब में क्या किया, शराब के लिए क्या है, शराब में उसने दर्शाया कि वह अपने उसने कुछ कीड़ों को पकड़ के रखा था और वो कीड़ों को उसने शराब के इसमें डाल दिया और क्या कुछ समय वो कीड़े मर गए। उसने कहा आप सब क्या सीखते हो इससे, तो क्या बोला उसने, हाँ शराब पिएगा तो पेट के कीड़े सब मर जाएंगे। तो क्या है, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जो हम देखना चाहेंगे वो ही हम देखेंगे। तो जब अर्जुन, जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया था अब दुर्योधन को, तभी तो थोड़ा विस्मित हो गया था, पर बाद में जब उसने उल्का को भेजा, उल्का ये शकुनी का पुत्र था, और युद्ध शुरू होने के पहले दुर्योधन ने उल्का को भेजा कमांडो को उकसाने के लिए, बोले भीम तुम तो क्या तुम खुद को इतने शक्ति मानते हो, पर तुम्हारे सामने द्रौपदी का अपमान करवाया मैंने, सबको सबका अपमान करके उनको उकसाने का प्रयास किया। तभी कृष्ण का बोला, कृष्ण तुम क्या, तुमने एक रूप दिखा दिया उसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी बहुत सारे रूप दिखा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी देखते हैं तुम्हारे रूप दिखाने से युद्ध रणभूमि में क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जादू बोला तुम कर रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है, व्यक्ति जो देखना चाहता है वही देखता है, उसके अलावा व्यक्ति कुछ देखता नहीं है। तो इसीलिए जो भौतिक अवस्था में जो होता है व्यक्ति ना, वह तो सोचता है कि भौतिक जगत के परे कुछ है ही नहीं और भौतिक जगत में ही हमें रहना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। हमें इस भौतिक जगत में ही वो सोचते हैं कि जीना है हमको यहाँ पे। तो इसलिए ये जो भाव है वह व्यक्ति आध्यात्मिक तत्व तो समझ भी का प्रयास भी करेंगे तो समझ नहीं पाते, वो अचेतसा, उनकी चेतना जो है वह भवबंधन में फंसी हुई है, भौतिक स्तर पे अटकी हुई है। तो ऐसे लोग जो भौतिक तत्वों के परे आध्यात्मिक तत्व को देख नहीं सकते हैं, वह कैसे आध्यात्मिक तत्व की ओर प्रगति कर पाएंगे। तो बताएगा ठीक है, अगर वो लोग सिर्फ भौतिक चीजें ही देख सकते हैं तो ठीक है, भौतिक जगत पे ही कैसे भगवान की कृपा है वह व्यक्ति देख सकता है, भौतिक स्तर के कैसे भगवान की कृपा हो रही है वह व्यक्ति देख सकता है। तो क्या होता है, वहां बताया गया है कि हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, तो भौतिक जगत में जीने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए, भौतिक स्तर पर आनंद प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत सी योजनाएं लगती हैं, और वो सारी योजनाएं जो है वो भगवान करते हैं। तो अभी इस भगवान बताएंगे कैसे जो ब्रह्मांड के स्तर पे, अगले श्लोक बताते 12वें श्लोक में, ब्रह्मांड के स्तर पे भगवान ने हमारे संरक्षण की क्या योजना की है, 13वें श्लोक में पृथ्वी के स्तर पे, और 14वें श्लोक में हमारे शरीर के स्तर पे। तो इस तरह से कॉस्मोलॉजिकल, टेरेस्ट्रियल और फिजियोलॉजिकल। तो किस तरह से हम भौतिक दृष्टि से देख सकते, भौतिक जगत पे देख सकते हैं कि पार्श्वभूमि में कुछ योजना होनी चाहिए, उसके कारण ही मैं जी सकता हूँ। तो वह ज्ञान चक्षु की शुरुआत है, मतलब जो भगवान को प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, नहीं ऑन द वे टू कृष्णा में, कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम कृष्णा बट नॉलेज डजंट बिगिन फ्रॉम कृष्णा। सूर्य सब ज्ञान जो होता है भगवान से आता है, पर जो हमारे ज्ञान की शुरुआत होती है वो भगवान से नहीं होगी। अचानक कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सोचेगा, लोग क्या इस भौतिक जगत में देखेंगे इधर उधर क्या है, फिर देखिए ये बड़ा पहाड़ है, ये बड़ा आसमान है, ये बिजली, सब कहाँ से आ रही है। तो हमारे जो ज्ञान की शुरुआत होती है इस जगत से होती है। अगर शास्त्रों का शास्त्र का ज्ञान है तो दूसरी बात है, पर देव शास्त्र नहीं है तो हमारा जो हमारे ज्ञान की शुरुआत इस भौतिक जगत से होती है, फिर उसके बाद में हम दूर चीजें देखते हैं। तो ठीक है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक तत्व को देख नहीं सकता है तो इस भौतिक जगत में ही भगवान ने क्या क्या किया वो देख सकता है। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकां तो भगवान बता रहे कि वही तीन चीजें जो छठे श्लोक में बताई कि आध्यात्मिक जगत में नहीं है वो, क्या सूर्य चंद्र और अग्नि, उनकी इस भौतिक जगत में बहुत जरूरत है। उसके बिना रोशनी नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, रोशनी छोड़ो शक्ति नहीं होगी इस तरह से कुछ भी जीवन भी नहीं होगा। तो ये जो इस जगत में शक्ति की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, और बोलते हैं ये मैं दे रहा हूँ, वो सब मेरी शक्ति आ रही है। आदित्य सूर्य चंद्र और अग्नि सबकी शक्ति मुझसे आ रही है। फिर उसके बाद अगले श्लोक में बताया कि भगवान कैसे ये पृथ्वी भी मेरे ही शक्ति से चल रही है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमौजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो काम आविश्य च भूतानि, जो पृथ्वी है ये अभी ऐसे लग हवा में ही तैर रही है, इसे वातावरण प्रमाण तैर रही है, कैसे तैर रही है, गामाविश्य मैं इसके अंदर गया हूँ, मैं इसमें प्रवेश किया हूँ, उसके कारण इसको संतुलित रख रहा हूँ मैं। तो अभी वैज्ञानिक लोग उसको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बताएंगे, पर वास्तव में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आती कहाँ से है, वह उसका जो उगम है उसके बारे में न्यूटन को भी कुछ पता नहीं था। और न्यूटन ने जब बताया, उसको पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण आती कहाँ से, उसने कहा कि जो शक्ति दिख रही है उसको उसका व्हाट इज मेजरिंग मापने के लिए, उसको गिनने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता सकता हूँ, पर शक्ति कहाँ से आती है मुझे पता नहीं है। तो इट्स न्यूटन्स लॉज आर ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ऑपरेशनल मतलब क्या चल रहा है उसका वर्णन करना। तो ये बहुत बड़ा जटिल विषय है। मोस्ट ऑफ साइंस इज अबाउट डिस्क्रिप्शन, इट इज नॉट अबाउट एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, जो हो रहा है उसका वर्णन करना है, और एक्सप्लेनेशन मतलब क्यों हो रहा है ये बताना। तो अभी जो जो सारे ग्रह है वो अपने अपने बराबर मार्ग में क्यों रहते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या है, जो ग्रहों को अपने मार्ग में रखती है वो शक्ति। तो इसमें आप समझ रहे, इसमें समझावट क्या दी गई, जो उसको रखता है जो चलाता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कृति क्या है, जो उसको चलाती है। तो ये केवल एक वर्णन है। तो जो चल रहा है सृष्टि में उसको एक नाम देना यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसको गिनना एक बड़ी बात हो सकती है, पर उसका उगम क्या है वो बताना बड़ा मुश्किल है। यह अंतिम दृष्टि से भगवान से आता है। तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, और भगवान जी यहां बताए गांव मांगी भूता ने, दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या है, दोनों विरोध कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों सत्य है। गुरुत्वाकर्षण नियम सत्य है, जो उसका ऐसे इक्वेशन बताया कि इतनी मात्रा में शक्ति से आएगा वो सत्य है, पर क्या है वह एक स्तर का सत्य है। आपको बिलियर्ड्स का गेम पता है, बिलियर्ड्स में क्या होता है, कैरम जैसे ही होता है, पर कैरम से बड़ा बोर्ड होता है वो, और उसमें कैरम में उंगली से मारते हैं, पर वहां पे क्या होता है लंबी ऐसी लकड़ी होती है, लकड़ी से मारते हैं, और उसमें बहुत से गेंद होते हैं, और कॉर्नर में कोने में उसमें वो छेद होते हैं, उसमें डालना होता है। तो अभी कोई ऊपर से केवल वो टेबल को देखेगा, तो टेबल में क्या दिखेगा उसको, कि ठक यहाँ पे एक लकड़ी आई और ये लकड़ी ने इस गेंद को मारा, फिर उस गेंद ने उसको टक्कर किया, उस गेंद ने उसको टक्कर किया, फिर वहां पे खड्डे में जाके गिर गया। और अभी ये जो है सारे जो सारे जो गेंद है, गेंदों का कौन सी गेंद कहाँ पे जाके गिरी, क्यों गिरी, और ये बताना है हम उसको मैकेनिक्स, हम उसको विज्ञान की दृष्टि से बता सकते हैं कि हाँ बराबर ये लकड़ी इस तेजी से ये इस जगह पे आके टक्कर किया, उसके कारण वहां पे वो खड्डे में गिर गया। तो वो सत्य है, वो सत्य है कि इस तेजी से वो लकड़ी इस शक्ति से इस तेजी से इस एंगल से वो लकड़ी टक्कर किया, उसके कारण वो खड्डे में गिर गया। पर साथ साथ उसके वाला एक और सत्य है कि वो जो व्यक्ति के हाथ में लकड़ी थी वह एक्सपर्ट है, उसने बराबर उस शक्ति से उस एंगल से उस तेजी से उस लकड़ी का उस गेंद को मारा। तो जो वैज्ञानिक सत्य है कि बराबर ये रफ्तार से लगी इसके कारण गिर गई, वो सत्य है, और उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि उस बिल्ली वर्ल्ड के बोर्ड के बाहर एक व्यक्ति है और व्यक्ति की प्रतिभा भी है। तो साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस आर नॉट कॉन्ट्रेडिक्टरी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो है ये विरोधाभास नहीं है, बिलियर्ड्स के बोर्ड के अंदर से देखेंगे तो हाँ जरूर और वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है कि इस तेजी से मारा इसलिए हो गया, और उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि व्यक्ति ने इस तरह से इस प्रतिभा से यह किया इसके कारण वो हो गया। और फिर इसके बाद में बताएंगे भगवान कैसे यहां तक, वही नहीं कि पृथ्वी को संभाल रहे हैं पर हमारी पाचन क्रिया को भी संभाल रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो वैसे कि मैं पचन शक्ति के रूप में आता हूँ, वैश्वानर पचन के देवता है, मैं उनके रूप में आता हूँ और मैं पचन करवाता हूँ। और मैं पचन करवाता हूँ बोलते हैं कि पचन करवाने के लिए जो अन्न होता है वनस्पति है उसका भी पोषण मैं ही करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अभी वैज्ञानिकों को पता चला है कि जो पचन करवाना होता है ये कोई आसान काम नहीं है। हम सोचते हैं कि खाना प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खाना पचन करने के लिए वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल सब लोग कृत्रिम करना चाहते हैं, तो किसी का हाथ टूट गया तो कृत्रिम हाथ लगा दो, किसी का दांत टूट गया तो कृत्रिम दांत लगा दो। तो बहुत लोगों को पचन की समस्या होती है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या हमें कृत्रिम पचन का मशीन पेट में डाल देंगे, तो किसी को समस्या ही नहीं। ये प्रयास किया तो क्या हुआ, मैंने बताया था पहले किताब में लिखा हुआ है, जब उन्होंने करने का प्रयास किया तो क्या हुआ, उनको पता चला कि पचन इतना कठिन है कार्य कि उसको एक मशीन नहीं चलेगा, फैक्ट्री लगेगा एक और वो फैक्ट्री एक फैक्ट्री भी काम नहीं करेगा, दो मील का फैक्ट्रियों का चेन लगेगा एक। तो फिर उन्होंने पूरा संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि जो मेहनत होती है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी मेहनत है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो बैग है ये 22 किलो का बैग है, यहाँ से नीचे मैं पोलैंड जाना है वहाँ पे, तो कृपया यहाँ से आप नीचे तक लेके जाओ, वहाँ पे गाड़ी में रखो, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैं बोलूँगा ये जो बैग है यहाँ से आप उठा के रेलवे स्टेशन तक लेके जाओ, तो बहुत बड़ा काम है। मतलब ये बैग उठा के यहाँ से बॉम्बे तक लेके जाओ, तो नामुमकिन काम होगा। तो कितना वजन है और कितने दूर तक ले जाना है, उससे कितना मेहनत है वो लगाता है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे जो पेट की जो एलिमेंट्री कैनाल जो पेट में जो होता है ना, बहुत लंबा ट्यूब होता है वो, जो हमारे यहाँ से भी आता है फिर नीचे तक जाता है वो, जो हमारे साधारणतः शरीर जो होता है उससे लगभग 10 से 15 गुना लंबा होता है हमारा जो पचन की सारी प्रक्रिया। तो उस हम जो भी खाते हैं वो पूरी यंत्रणा से ऊपर से नीचे तक जाता है, और नीचे लेके जाने में उसको परिवर्तित करने में उस पर बहुत शक्ति लगती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जो एक अन्न का खाते हैं हाथ भर के, वन माउथफुल एक घास खाते हैं, उसको पचन करने के लिए अंदर जितनी मेहनत लगती है वो साधारण मानव पूरे दिन भर भी नहीं करता है। तो ये कौन कर रहा है, जो हम दिन भर में काम नहीं करते हैं वो अंदर पचन का मेहनत लगता है, वो कौन कर रहा है वास्तव। वैज्ञानिक को पता चला है कि अगर हम जानते हैं कोई व्यक्ति बहुत मृत्यु के पास में होता है तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, सो सांस लेने की प्रक्रिया वो बाहर से करवाते, तो अभी वो मुश्किल है और उसको बहुत खर्चा भी आता है। तो तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि साधारणतः एक व्यक्ति को कृत्रिम पद्धति से जीवित रखना है तो लगभग कभी एक दिन का 25,000-50,000 हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में अगर वो भी क्या है, कुछ कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर संपूर्ण शरीर को एक दिन के लिए भी चलाना है, मतलब सांस चलाना है, फिर पचन करवाना है, फिर जो उसका डाइजेशन करके एक्सक्रीशन करवाना है, ब्लड सर्कुलेशन करवाना है, सांस लेना, सब कुछ करवाना है, तो बोले अभी तक हमारे पास यंत्रणा है ही नहीं, पर अगर होती ही अंदाजा करेंगे तो एक दिन को शरीर को कृत्रिम से चलाए रखने के लिए 7 करोड़ रुपए लगेगा, सिर्फ एक दिन को शरीर चलाने के लिए। ये कौन कर रहा है? हम तो शरीर में आके ऐश कर रहे हैं, पर कौन कर रहा है ये सब? तो वास्तव में ये सब बैकग्राउंड में ना ये भगवान कर रहे हैं। तो इस तरह से ज्ञान चक्षु से हम देख के हम भगवान हमारे जीवन में क्या योगदान कर रहे हैं इसको समझ सकते हैं। इसकी चर्चा हम आगे कल करेंगे। बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।
Whatever happens, don't disturb me in the class. Because you know this is plain. If any recording stops also, don't tell me. So what happens is, this is secondary. The class is primary. You know, imagine the same thing has been happening in Bhagavatam class. You would not have stopped, is it? And this second, it doesn't happen. Don't worry about it.